जिन्हें सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जिन्हें सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य नाम के कारण आत्मसंतुष्ट हैं, उनके लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की संस्तुति की जाती है। भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामान कीर्तनम अर्थात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं। अतः विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार से हैं: एक, भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। दूसरा, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य सारे विषयों को सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। तीसरा, भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, यह ध्यान कहलाता है। चौथा, भगवान के किसी रूप विशेष पर मन को निरंतर एकाग्र रखना, यह ध्रुवा स्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। पांचवा, किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाती है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। अतएव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संभव है। विशेषतया उदासीन अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त एकाग्रता कहलाती है। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवत कक्षा में। तो इससे पहले कुछ चर्चा करें, गोचंदास ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है, इसमें से पढ़ेंगे। लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। मेरी यही आशा है कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों में के समीपित रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें गौर संघ गौर राय महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं तथा मैं उनका दास हूँ। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की इच्छा मानता हूँ, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें उन्होंने गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। उन्होंने गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु और विष्णु प्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचनदास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। जनसाधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़िया वैष्णव वृंद अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में दिखते दिखाई पड़ते हैं। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर के चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्री प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। परम करुणा गाते हुए श्री प्रभुपाद गौरांग प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी, भजो भजो भाई चैतन्य मिताय सुदृढ़ विश्वास करें। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं कि हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, यह ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतएव व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप कीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री लोचन दास ठाकुर आरती महामहोत्सव की आज पहले चर्चा हो चुकी है। सपनम कीर्तनम और पंचनम स्मरणम पर प्रयास करेंगे। और इससे पहले मैं यहाँ बैठे हुए सभी सीनियर वैष्णव बाहर से बात प्राप्त करना चाहता हूँ। धारा प्रभु जी, नितेश प्रभु, नितेश प्रभु जी, अमित वैष्णव जी, तो स्मरणम मुझे पहले लगा था कि मैं इसमें क्या बता सकता हूँ कि मेरे प्रति स्मरण नहीं होता, मैं स्मरण पर बताऊंगा। फिर मैंने कहा चलिए इस बहाने कम से कम स्मरण होगा भगवान का। तो बोलते बोलते स्मरण हो जाएगा जो ठीक है। तो जो स्मरण है वो भक्ति के उसमें इस नवधा विधि में तीसरे स्टेज पर है, अर्थात श्रवणम और कीर्तनम के बाद जो है स्मरण का नंबर आता है। अर्थात अगर कोई श्रवण और कीर्तन में, श्रवण और कीर्तन जिसका ठीक होता है वो निश्चित रूप से जो है स्मरण कर सकता है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं एक तात्पर्य में कि विदाउट बीइंग चैंपियन इन हियरिंग एंड चैंटिंग वन कैन नॉट गेट द रिमेंबरेंस। जो है वो व्यक्ति जो है स्मरण को प्राप्त नहीं कर सकता अगर विदाउट चैंपियन बने हुए हियरिंग और चैंटिंग में, अर्थात श्रवण और कीर्तन में जो है बिना चैंपियन बने हुए किसी को स्मरण नहीं होता। और एक बार मोहन बाप ने बता रहे थे मुझे शेयर करते हैं कि स्मरण जो है वो किया नहीं जाता, स्मरण होता है। और स्मरण उसका होता है जिसका श्रवण कीर्तन होता है। तो जब तक श्रवण कीर्तन नहीं होगा स्मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो श्रवण का अर्थ जो स्मरण है इसका अर्थ क्या है? बी विद द लॉर्ड विदाउट एसोसिएशन विद द लॉर्ड, भगवान के साथ होना पर उनके साथ बिना एसोसिएशन के। आप स्मरण करके किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं बट फिजिकली आप उनसे एसोसिएट नहीं करते। तो जो कहा जाता है कि एक व्यक्ति वहां होता है जहां उसकी उसका माइंड होता है, तो जहां उसका मन है वही वो व्यक्ति होता है। तो जो स्मरण की पद्धति है प्रमुखता ये मन से की जाती है, हालांकि वो उस मन से जो मन शुद्ध होता है। और जिस मन में इतने सारे भौतिक इच्छाएं रहेंगी वो मन जो है निश्चित रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो मन स्मरण करना की जो विधि है ये पांच तरह की होती है। किसी विशेष रूप का शोध करना, तो बात लिखते हैं शोध का बेटा मतलब है जैसे कोई पर्टिकुलर कोई शालिग्राम की पूजा करता है तो शालिग्राम की पूजा से संबंधित सारी चीजों को की जानकारी प्राप्त करना या उसकी रखना। ये कहाँ से जो है ये प्रकट होता है, कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह कितने तरह का शालिग्राम शिला होता है, कौन से शालिग्राम की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उसकी पर्टिकुलर उसके रूप में शोध करना है, उनके कारण प्राप्त करना जो है उसको ये शोध कहा जाता है। उनके बारे में एक पर्टिकुलर जानकारी प्राप्त करना। श्री श्री राधा कानून भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर नारायण जी की, तो ये इसको बोलते हैं शोध करना। तो ये जो है वो स्मरण का एक प्रकार है कि आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में या शालिग्राम के बारे में, मान लीजिए तो शालिग्राम के बारे में हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो ये शोध है। दूसरा है कि मन को एकाग्र करना या मन को भौतिक कार्यों से अलग रखना। एकाग्र करने का मतलब है कि हम भौतिक कार्यों से जब अपने मन को अलग करेंगे तो मन स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक विषयों के ऊपर एकाग्र होगा या टिकेगा। क्योंकि जब तक हम भौतिक चीजों से इसको विलग नहीं करते हैं, एक हमारे यहाँ एक वक्ता आए थे उन्होंने कहा था कि जो असली वैराग्य का मतलब है कि मन को इंद्रिय विषयों से हटा देना, ये असली वैराग्य है। तो इसमें भी ऐसे बताया गया है कि मन को एकाग्र करने का मतलब है कि उसको भौतिक कार्यों से अलग कर देना। तो ऐसा जो मन होगा फिर वो भगवान का चिंतन भी करता है और एकाग्र कर पाता है। फिर तीसरा है किसी विशेष रूप पर एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, और ये जो विधि है वो ध्यान कहलाती है। जैसे भगवान के किसी विशेष रूप को का चिंतन करना या भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना। अगर कोई डिवोटी निरंतर या अभ्यास करके इस चीज को प्राप्त कर लेता है कि वो किसी भगवान के किसी एक विशेष रूप का ही ध्यान कर पाता है, उनके चरणों का ध्यान कर पाता है और बार बार उसको ऐसा करने में सक्षम हो पाता है, तो वो उसको ध्यान कहा जाता है। ये तीसरी विधि है प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्मरण की। और जो चौथी विधि है वो किसी विशेष रूप पर मन को एकाग्र रखना। एक है एकाग्र करना, एक है रखना, मतलब आप उसको कंटिन्यूअसली रख पाते हो, उस ध्यान की अवस्था को आप हमेशा मेंटेन रख पाते हो, तो उसको बोलते हैं। इसको प्रभुपाद लिखते हैं इसमें भी कि ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा स्मृति का मतलब है कि ऐसा रूप जिस तो ऐसे चित्त में उस तरह से बैठ गया है कि सारे जीवन में भी वो रूप जो है वो उसके हृदय से निकलेगा नहीं या निकलता नहीं है, उस डिवोटी के हृदय से जो है वो रूप बाहर नहीं निकलता कभी, बिल्कुल जो है वो स्मृति बना करके एक परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाता है, कभी बाहर नहीं निकलता। और किसी भक्त के लिए यही स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही स्थिति उसको जो है इस भौतिक जगत से जब वो बाहर जाएगा अर्थात जब उस भौतिक शरीर को छोड़ेगा, तो ये स्थिति उसको जो है वो हेल्प करती है भगवान का स्मरण करने में। क्योंकि इस स्थिति का अगर ध्रुवा स्मृति नहीं है किसी की, तो क्या है कि व्यक्ति कभी कभार हम सब जो भी भक्ति में लगे हुए हैं थोड़ी देर या कभी सिचुएशन के हिसाब से भगवान को स्मरण करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं पर थोड़ी देर में भूल जाते हैं, फिर दूसरे सिचुएशन में हम दूसरे स्थिति को याद करते हैं। परंतु ये ध्रुवा स्मृति वाले जो भक्त होते हैं उनकी स्मृति ये है भगवान के धाम तक ले जाते हैं। और इसी बात को भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि अंतकाल ये चमानवे स्मरण मुक्तवा कलिवरम, कि अंतकाल में जो है वो विजय स्मरण करते हुए जब व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो मूल्य भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो वो यही भाव होता है, यही ध्रुवा स्मृति होती है जिसकी वजह से जो भक्त उस स्थिति को प्राप्त करता है। फिर एक नेक्स्ट है 5वां वाला, किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, कि भगवान की किसी जैसे ये भाव गोपियों में था प्रमुख था कि वो भगवान के जो दूसरे रूप थे उनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, केवल एक रूप में उनकी रुचि थी और वो थे कृष्ण रूप। जब भगवान रासलीला के मध्य में से छोड़ के चले जाते हैं और स्वयं चतुर्भुज रूप में वहां बैठ जाते हैं और उन्हीं से गोपियां पूछती हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, जबकि स्वयं भगवान है चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं, परंतु गोपियों को भगवान विष्णु में कोई रुचि नहीं है, उनको कृष्ण ही चाहिए, उसी वही रूप श्याम सुंदर रूप चाहिए। तो ये 5वां स्टेज है स्मरण का कि प्रभुपाद देखते हैं कि ये जो है एक किसी खास, जैसे किसी भी डिवोटी का अलग अलग हो सकता है, जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए था या प्रहलाद जी का नरसिंह देव के लिए था, ये एक पर्टिकुलर रूप के ऊपर उनको वही रूप चाहिए। जैसे हनुमान जी जो है वो राम के अतिरिक्त और किसी के लिए इतने व्याकुल नहीं होते थे, उनको वही रूप चाहिए था। एक कथा आती है कि एक बार एक भगवान ने गरुड़ को भेजा द्वारका से कि आप हनुमान को बुला के लाओ, उन्हें कहो कृष्ण बुला रहे, उन्हें कहो भगवान बुला रहे, वो बताने गए कि भगवान ने आपको बुलाया द्वारका में, तो पूछते हैं कौन से भगवान, कह रहे कृष्ण बुला रहे, चलो आता हूं। तो फिर आए नहीं, तो वो गरुड़ पहुंच गए, कहा हनुमान तो आए नहीं, तो भगवान ने पूछा गरुड़ से कि तुमने क्या कहा था, यही कहा था मैंने कि भगवान कृष्ण आपको द्वारका बुला रहे हैं, तो कहा नहीं नहीं तुमने गलत बताया, उसको जाके बोलो कि राम आपको बुला रहे हैं द्वारका। तो दोबारा गए गरुड़, बोला भगवान राम तुम्हें याद कर रहे, तो कहा भगवान राम याद कर रहे, जल्दी चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाओ मैं आता हूं। तो फिर गरुड़ चले गए और जब गरुड़ वहां पहुंचे तो हनुमान जी वहां से पहले जो है वो भगवान के राम समान जो है प्रकट हो गए थे, मतलब कृष्ण के सामने, और भगवान कृष्ण ने जो है वो राम के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। तो कहने का मतलब किसी खास भक्त को किसी खास रूप से ज्यादा प्रेम होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है समाधि की अवस्था होती है भक्ति में, कि जो उसको ऐसे व्यक्ति को जो है वही रुचि, जैसे गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए, इसी तरह से बाकी हनुमान जी को जैसे राम के अतिरिक्त और कोई नहीं चाहिए। तो करें ये जो अवस्था है व्यक्ति की वो समाधि की अवस्था है। परंतु सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से जो है हमें अपना मन भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए। ये तीन प्रकार है ना, मना कृष्ण निवेश। प्रहलाद महाराज की जो ये ऐसी स्थिति है, ये उच्च स्थिति कैसी बनी, रिमेम्बरेंस की वजह से। वो भगवान को याद करके, भगवान को स्मरण करके इतनी बड़ी बड़ी बाधाओं से बच पाए, इतनी बड़ी बाधाओं को उन्होंने पार कर लिया केवल भगवान के स्मरण के बल पर। वो सब निरंतर भगवान का स्मरण करते थे निरंतर। और प्रहलाद महाराज की स्थिति देखिए कि प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे बचाइए, कभी नहीं प्रार्थना कि मुझे बचा लीजिए, मुझे फेंक रहा है। आप खुद सोचिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, उसका पापा फादर मारने को तैयार है और व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता कि मुझे बचा लीजिए। ये चिंता किसको थी, स्वयं भगवान को। क्यों, क्योंकि वो भगवान का हमेशा स्मरण करते थे, तो भगवान भी उनका जो है स्मरण करते थे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा तो वो भी बदले में उनका स्मरण करते हैं, तो भगवान हमेशा स्मरण करते थे ध्रुव की और प्रहलाद महाराज की। तभी उन्होंने प्रहलाद महाराज को जो है इतनी बड़ी मुसीबतों से बड़े आसानी से बचा देते थे और प्रहलाद को कभी भय नहीं लगा। तो ये उसमें तो इसलिए हमें किसी भी रूप में जो है वो कृष्ण में अपने मन को लगाना चाहिए। और ये जो है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, खासकर रिमेम्बरेंस जो है वो संभोग में और वियोग में, दोनों स्थितियों में होती है। जो संभोग में अर्थात जो भगवान की उपस्थित होने के समय में, क्या भगवान जब उपस्थित होते हैं उस समय भी जो है भगवान को याद किया जाता है। जैसे द्वारका की रानियां थी, वो भगवान को भगवान होते थे तब भी भगवान के बारे में चर्चा करते थे। मान लीजिए भगवान कुछ देर के लिए सुधर्मा राज सभा में चले जाते थे तभी भगवान का स्मरण करती थी, हालांकि उनको पता होता था कि अभी कृष्ण आ जाएंगे, पर तभी भी भगवान को जो है वो याद करती थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के संग में रहती है फिर भी भगवान को भूलती नहीं, कभी याद करती है। तो इनको बताया गया कि ये सब जो है वो संभोग अर्थात साथ में रहने में जो है वो, और वियोग में पूरी गौड़िया वैष्णव, पूरा गौड़िया गौड़िया वैष्णव जो है वो इस वियोग का जो स्मरण है, महाप्रभु राधा रानी कुछ किसी को भी ले लीजिए, वो सारे जो है वियोग में स्मरण कर रहे हैं भगवान का। और ये स्मरण का जो ये सेपरेशन में जो स्मरण है भगवान का वो यूनियन से ज्यादा इंटेंस होता है, अर्थात ज्यादा उच्च और श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जो राधा रानी का जो स्मरण है कृष्ण के लिए, जो वियोग है कृष्ण के लिए, जो स्मरण है कृष्ण के लिए वियोग में, वो सबसे श्रेष्ठ है इस भौतिक जगत में, अर्थात भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि उनका जो स्मरण है कृष्ण के लिए। और वही जो है महाप्रभु में और बाकी के सब गोस्वामियों में और गुरु परंपरा में और गौड़िया वैष्णव का जो लक्ष्य है वही है, वो कृष्ण को सेपरेशन में याद करना, वियोग में जो है वो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। ये भगवान अपनी तरफ से डिवोटियों के लिए, जिन डिवोटियों पर भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं या ज्यादा उनका प्रेम बढ़ाना चाहते हैं अपने प्रति, तो उनको वो स्थिति उनके सामने प्रकट करते हैं कि भगवान को याद कर सके विरह में। और जो विरह में भगवान को याद कर पाता है वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और गौड़िया वैष्णव का जो लाइन है, हमारी जो परंपरा है वो इसी जो है इसी चीज का जो है अनुगत है कि हम लोग इसी वियोग के उस ओर है। जब हमें भगवान से वियोग होगा इस भौतिक जगत में रहकर भी भगवान से जब हमें विरह होने लगेगा तो वो जो प्रेम है, वो जो स्मरण है वो सबसे श्रेष्ठ है। और बताते हैं कि ये जो नाम का स्मरण है या रूप का, गुण का और लीला का, इसमें से खास करके जो नाम का और गुरु का स्मरण है वो भक्तों के लिए है कि वो नाम को ज्यादा स्मरण करें या नाम लें और फिर गुणों का स्मरण करें, गुणों का, खास करके उन गुणों का जो भगवान ने एज ए भक्त वत्सल किया है, जो उन्होंने अपनी भक्त वत्सलता के लिए जिसलिए प्रसिद्ध है, वो गजेंद्र के ऊपर जिन्होंने जैसी कृपा की, द्रौपदी के ऊपर जिन्होंने कैसी कृपा की और जैसे ऐसे भक्तों के ऊपर उन्होंने कृपा की है, तो उस कृपा वाले जो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो भक्त वत्सलता के जो गुण है, तो और जो दूसरे गुण है भक्तों ने प्रहलाद की कैसी रक्षा की, इन गुणों को जो है भक्तों के लिए कहा जाता है, खास करके जो वैदिक भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके उनको उनके लिए कहा जाता है कि उनको नाम का चिंतन अर्थात नाम का जो है स्मरण और गुरु का भगवान के गुण का जो स्मरण है वो ज्यादा करना चाहिए कि भगवान अपने महान है, उन्होंने ऐसे किया। रूप का स्मरण और लीला का स्मरण भी भक्तों के लिए है, परंतु वो जो है वो थोड़े एडवांस डिवोटी के लिए बताया जाता है कि वो लोग रूप का स्मरण और लीला का स्मरण जो है उनको ज्यादा होता है। तो हालांकि जो जैसे यशोदा माता है भगवान के हमेशा लीला स्मरण करती थी कि कृष्ण ने ऐसे किया है, ऐसे कर लिया, और कभी जो है उनको कुछ जो लीला किया था भगवान ने उसको गाती भी थी पीछे से कि जैसे भगवान अब नहीं है, और हमेशा उनको जो ये चिंता करती थी कि कृष्ण ने जो है किस तरह से, एक बादशाह का रस भी था तो भगवान ने कुछ पहना नहीं है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, जंगल में गया है, इसमें हमेशा जो है भगवान का स्मरण करती थी। और ये गोपियां जो थी उनका अलग भाव था, भगवान को भी स्मरण कर रही हैं पर वो माधुरी भाव में। और इसी तरह से जो डिवोटीज हैं वो अलग अलग भावों में भगवान की का चिंतन करते हैं। जैसे यमुना जी, अब यमुना जी को केवल यही स्मशान भाव में है तो उनको ये स्मरण था कि कृष्ण जी को वो भी जैसे कृष्ण जब उनमें आते हैं, कृष्ण जब उनमें प्रवेश करते हैं तब यमुना जी आनंद देती है, ऐसा नहीं कि यमुना जी उठ के जाती है आनंद देने के लिए कृष्ण को, इसीलिए शांत रस के भक्त है। जैसे पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं या गायें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो गोवर्धन है, ये सब तब भगवान को आनंद प्रदान करते हैं जब भगवान वहां जाते हैं या भगवान जब उसको उनको टच करते हैं, जब भगवान उनके समीप होते हैं, तो ये सब इन्हीं स्थितियों को याद करते हैं कि भगवान ने मेरे सामने मेरे उस जल में स्नान किया था, मेरे जल में पीड़ा की थी, तो इस तरह से जो है ये उनको स्मरण होता है। दास रस में भी बहुत सारे हैं, चित्रक, पत्रक और रसाल, रक्तक, ये सब जो भक्त हैं भगवान को दास रस में भगवान की का याद करते हैं हमेशा। और वात्सल्य में यशोदा माता जो कि हमेशा कृष्ण के लिए चिंतित रहती है कि उसने खाया नहीं है या उसने चप्पल नहीं पहना, इस तरह से जो उनकी चिंता होती है, तो ये जो है ये वात्सल्य रस में है। साख्य रस में ग्वाल बालों का एक उदाहरण दिया जाता है कि हमेशा जब भी उनके सामने कोई संकट होता था वो हमेशा कृष्ण को याद करते थे। और जो है किसी भी खेल खेल रहे हैं कुछ भी, तो उनको कृष्ण को याद करते थे और बुलाते थे। इसी तरह से सुदामा के लिए भी कहा जाता है कि वो भी साख्य रस में भगवान को याद करते थे कि क्या मेरे सखा हैं और इस तरह से हैं, उनका महल है, वो वहां रहते हैं, इस तरह से उनके मन में हमेशा चिंतन रहता था कृष्ण के लिए। और गोपियां और राधा रानी ऑफकोर्स माधुरी भाव में जो है उनका चिंतन होता था जो राधा रानी के लिए। पर नारद जी इसी स्कंध के सातवें स्कंध में ही पहले अध्याय के 27वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि जितनी तल्लीनता से व्यक्ति शत्रुता में भगवान को याद करता है उतनी तल्लीनता से, नारद कह रहे मेरा मत है, उतनी तल्लीनता से वो भक्ति से याद नहीं कर पाता उतनी तल्लीनता में। तो फिर उसमें उस बताते हैं कि रिमेम्बरेंस जो है, हम जो डिवोटी हैं या कोई नॉन डिवोटी भी है उसका रिमेम्बरेंस ज्यादातर कब होता है, स्मरण कब होता है भगवान का, जब वो किसी मुश्किल में होता है, भय से कष्ट में जब होता है तब भगवान को याद करता है, जब भय होता है, कोई भय उपस्थित हो जाता है उसके सामने तो याद करता है भगवान, अब बचा लो भगवान में फंस गया हूं या मैं बहुत बड़ी मुसीबत है, अब यहां से कैसे निकलूंगा। तो जो साधारण तैयार जो भक्त होते हैं इन्हीं दो परिस्थितियों में भगवान को याद करते हैं। भय भी और दुख में। हालांकि जो ये जो प्रसंग शुरू हुआ था उसके शुरू में ही कहा गया था कि जो गोपियां हैं भगवान को जिस तरह से अपने काम से और लक्ष्य से हमेशा रिमेम्बर करती हैं माधुरी रस में, और भय से कौन याद करता है भगवान को, कंस हमेशा याद रखता था भगवान को हमेशा। हमने भी किसी के प्रति ऑफेंस कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें हमेशा याद रहेगा। उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, हमेशा बार बार नारा करते हुए कुछ चीजें चल रही होती हैं, इस व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोला था। तो क्या रिमेम्बर कर रहे हैं हम कृष्ण को रिमेम्बर नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को रिमेम्बर कर रहे हैं, या हमने किसी के प्रति ऑफेंड कर दिया उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति के जो है उसको समझ में आ गया तो हमें भी एक ग्लानी होती है मैंने उसके साथ ऐसे किया। इस तरह से क्या है कि हम इस सिचुएशन को रिमेम्बर करते हैं या उस व्यक्ति को रिमेम्बर करते हैं, या हमने किसी कोई मेरे से शत्रुता रखता है तो हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, तो ये रिमेम्बरेंस जो है वो ऐसी स्थितियों में बहुत इंटेंस हो जाता है और उसको हम अलग नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि इस ये जो स्मरण है इसको अलग कर लेना, और बहुत लंबे समय तक ये याद रहता है। अब हमें हमारे साथ किसी ने किया हो या हमने किसी के साथ किया हो, ज्यादातर उस स्थितियों में जब हमारे साथ किसी ने गलत किया हो या हमें लगा हो कि हमारे साथ उसने गलत किया है तो ये चीजें हमें हमेशा याद रहती है और हम उसको बार बार याद करते हैं। तो तभी जो है ये नारद जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब भगवान को भी जो है इस शत्रुता के भाव में, जैसे शिशुपाल ने द्वेष में इतना द्वेष करता था भगवान से कि हमेशा याद रहता था कि कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा इस कृष्णा कॉन्शियस में होता था, स्मरण रखना भगवान। अब सबसे बड़ा रूल क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। प्रभुपाद कह रहे हैं सारे रूल का सबोर्डिनेट है बाकी सारे रूल, तो वो हमेशा भगवान को याद रख रहा है वो लगभग के प्रतिकूल भाव में। और हम भी ये सोचे ठीक है शत्रुता कर लेते हैं भगवान बार बार याद रहेंगे हम, तो हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि हमारा वो शत्रुता करने का भी स्टेज होते हैं कि आप इतने भगवान भी हैं आप इतने सक्षम भी हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। तो हमारे लिए तो अभी यही है कि हम अनुकूल भाव में जो है वो भगवान को स्मरण करने का प्रयास करें, और भगवान के जो गुण है खास करके भक्तों के लिए बात्सल्यता या भगवान का जो भक्त बात्सल्यता है वो उस गुणों को ज्यादा याद करना चाहिए एक डिवोटी के। फिर ये कहा जाता है कि जो स्नेह पांडवों में भी जो है वो भगवान को बहुत स्नेह से भगवान को हमेशा याद करते थे कि अगर जो कृष्ण यहां होते तो ये स्थिति नहीं होती, अगर कृष्ण इस समय होते तो हम इस से पार कर लेते। इवन बोलो जब कई बार जब पांडव लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे पांचों भाई बैठ कर जंगल में निकले जब वनवास के समय में, तो उनको बड़ा ध्यान आता था कि अगर कृष्ण होते तो पता नहीं इस सिचुएशन से हमें निकाल लेते। तो भगवान ऐसा करते भी थे, खैर उनके सामने जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा सल्यूशन होता था। और फिर इसमें आगे संबंध से वृष्णि, जो वृष्णिवंशी थे जैसे भगवान द्वारका में जब हस्तिनापुर आए थे तो मैं दो तीन तीन महीने रुक जाते थे, तो जो वृष्णिवंशी हैं जो यादव लोग हैं वो बहुत याद करते थे भगवान को, उनको लगता था कि इतने समय हो गया और कृष्ण यहां से चले गए पता नहीं कब वापस आएंगे। इस तरह से उनके जो हृदय में जो है वो भगवान के प्रति जो क्योंकि उनका संबंध था कृष्ण से, संबंधों की वजह से कृष्ण को ज्यादा याद करते थे कि कृष्ण हम यहां से चले गए हैं। तो इस तरह से भी भगवान को याद कर सकते हैं हम, और तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जो है हम भगवान को याद कर सकते हैं, और भक्तों ने जो है पीछे भगवान का स्मरण किया। फिर ये है कि अब हमारे लिए कैसे कि हम कैसे याद करें भगवान को, ये तो अलग अलग भक्तों और ऊंचे भक्तों की स्थिति है, उन लोगों ने भगवान को जो है स्मरण किया, तो हमारे लिए क्या है कि हम कैसे स्मरण करें भगवान का। कहते हैं हम हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में हमारे सामने जो भी चीजें आती हैं उनमें जो है हम भगवान का हाथ देखें कि ये भगवान के अरेंजमेंट्स हैं, तो हम कृष्ण को याद कर पाएंगे। हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है वो हो सकता है कि हमारे लिए उत्तेजक हो, हमें मुश्किल में डालने वाला हो, भौतिक रूप से हम बहुत संकट में हो, तो हर परिस्थिति में हर इसके पीछे जो है वो कृष्ण को देखना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए, ये सब जो अरेंजमेंट है वो भगवान का है। इस तरह से जो डिवोटी है एक जो भक्त है जो साधक है वो कृष्ण को हमेशा याद कर सकता है, क्योंकि उसके सामने जो है सिचुएशन हमेशा फेवरेबल नहीं होता भक्ति में भी, तो वो जैसी भी सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन है उसको हर परिस्थिति में उसको भगवान का हाथ देखना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से है। और कहा गया कि जितने ज्यादा हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे उतने कृष्ण हमें याद रहेंगे, हम जितने ज्यादा सुनेंगे जितने ज्यादा बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो है वो हम उनको याद कर पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कहते हैं कि मुझे कैसे याद कर सकते हो, विभूति योग में भगवान ने सारी चीजें बताई हैं, आप मुझे कैसे याद कर सकते हो। उन्होंने 10वें अध्याय का जो विभूति योग है उन्होंने सात सात चीजों के लिए बता दिया है कि संसार में आप किसी भी चीज को देखोगे तो उसमें आप उनको याद कर सकते हो। प्रहलाद शास्त्र देवत्या मान कि देवतियों में मैं प्रहलाद हूं, उच्च श्रवा घोड़ों को किसी ने देखा तो ये उच्च श्रवा घोड़ा है, इसमें भगवान का रूप है। राजा को भगवान कह रहे हैं राजा ने मुझे कुछ मुझे देखो, हर एक चीज के लिए भगवान बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में आप मेरा दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वो इस भौतिक जगत अस्वस्था सर्वेक्षण, अगर हम इस अश्वत्थ के पेड़ में सामने पीपल का पेड़ खड़ा है हम इसको कृष्ण का रूप समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं इन वृक्षों में ये 12 वृक्ष हूं, मेरा प्रतिनिधि है। तो हम इन चीजों को, हालांकि ये विजन जो है वो बहुत अच्छे भक्तों के लिए है, तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं कि हम इन सारी चीजों में जो है वो कृष्ण को देख सकें। एडवांस डिवोटी का मतलब यही होता है जो हर चीजों में हर वस्तुओं में कृष्ण को देखता है, हर वस्तु में कृष्ण को देख पाता है, और यही भगवान विभूति योग में जो भगवान जो है यही बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। अनन्या चेतता सत्तम योम स्मरत नित्य सा तेसा हंस पाथा नित्य युक्त योगिना। ये अनन्या चेता सततम कि जो अनन्य भाव से मुझसे जुड़ा होता है और योम स्मरत नित्य सा और जो मेरा हमेशा स्मरण करता है, तो कह रहा माय भे पाप मैं उसके लिए सुलभ हूं, मैं ऑलवेज अवेलेबल, भगवान उसके लिए हमेशा अवेलेबल है ऐसे भक्तों के लिए जो उन्हें हमेशा याद करता है। तो हम इसमें खास करके हम इतिहास में भी देखते हैं ज्यादातर जो भक्त हुए जैसे द्रौपदी महारानी थी उनके ऊपर संकट उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान को याद किया, या गजेंद्र था वो उसके ऊपर जब संकट उपस्थित हुआ तब उसने भगवान को याद किया। बड़ा दूसरी तरफ एक डिवोटी की स्थिति देखिए वृद्धाश्रम है महाराज केतु जो वृद्धाश्रम बने वो राक्षस के शरीर में आने के बाद भी भगवान को याद करते थे और भगवान को भूले नहीं, उनकी भगवान की कृपा पर भगवान की चीजों पर हर चीज पर उन्हें उतना ज्यादा विश्वास था, इतना कि उन्होंने जो है वो इंद्र को कहा कि अपना एक वज्र चलाओ मैं इससे मारा जाऊंगा। हालांकि कभी उनको हिचकिचाहट हो रही थी कि उन्हें लगता था कि मैंने इतने अस्त्र चलाए ये किसी से नहीं मारा गया, खा गया सबको, तो पता नहीं वज्र को भी ऐसे कर देगा, परंतु वो जानते थे वृद्धाश्रम कहते ये भगवान का दिया हुआ, उन्हें विश्वास नहीं था पर उनको वृद्धाश्रम को पूरा विश्वास था कि ये वाले जो ये अस्त्र है इससे मैं मार जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो डिवोटी है उनको वृद्धाश्रम इस ऐसी स्थिति में रहने पर भी भगवान को हमेशा याद कर पाते थे। तो डिवोटी के लिए है कि कैसी भी परिस्थिति हो कैसी भी सिचुएशन हो उसको भगवान को निरंतर जो है स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल खुद ही है जो किसको कि प्रहलाद महाराज जो है कैसी उसकी परिस्थितियों में भगवान को याद कर पाते थे। तो एक डिवोटी के लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि उसको किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए और याद करना भी चाहिए। और फिर जैसा कि प्रभुपाद लिखते हैं स्मर्तव्य भागवत में श्लोक है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य कदाचलम कि विष्णु को हमेशा स्मरण रखना चाहिए उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो एक टॉप मोस्ट जो डिवोटी है हम जितने भी चीजें करते हैं चाहे वो चैंटिंग करते हैं भागवत क्लास में बैठते हैं रीडिंग करते हैं बाकी भक्ति की जो विधियों का पालन करते हैं सो इसलिए करते हैं कि हम भगवान को हमेशा याद रख सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को हम स्मरण कर सके, ये विधियां सिर्फ इसलिए है कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाएं कि हम भगवान को स्मरण कर सकें ऑलवेज। फिर फिर इसके बेनिफिट क्या है, चलो भगवान को स्मरण रख लिया और हमारे लिए दिया कि हमारे लिए उससे बेनिफिट क्या मिलेगा इससे। तो प्रभुपाद भारत में एक जगह एग्जाम्पल देते हैं, ये कीड़ा है कि वो हमेशा जो है वो बी के मधुमक्खी के बारे में सोचता है कि उसे सफलता होती है, और सोचते सोचते क्या होता है उसी जीवन में जो है वो उसके शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम भगवान का निरंतर जो है भगवान का स्मरण करेंगे तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम भी ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। भगवान को याद करते करते, उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को याद करते करते हम भी या डिवोटी भी ट्रांसजेंडर बन जाता है। एक सबसे बड़ा फायदा जो है उसके लिए है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतकाल चमावे हो, कि वो ये जो स्मरण है उसको अंतकाल में उसको भगवान के धाम ले जाने में सहायक होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अंतिम समय जो है वो परीक्षा की घड़ी है किसी के लिए, कि उसने कितनी भक्ति करी है उसका जो उसकी जो उसका जो टेस्ट होगा वो मृत्यु के समय में होगा। कि मृत्यु के समय में जो है वो यह भगवान को याद कर पाया कि नहीं कर पाया। तो ये अगर हम अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मृत्यु के समय में भी हम निश्चित रूप से और आसानी से भगवान को याद कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है भगवान को स्मरण करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम वृंदावन चेतना में रहते हैं तो हम भगवान को हमेशा याद रख पाएंगे। वृंदावन चेतना का मतलब है कि हमेशा कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना, हर वस्तु के लिए हर चीज के लिए कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना जो है वृंदावन चेतना है। तो जो भी डिवोटी इस वृंदावन चेतना में रहेगा निश्चित रूप से वो कृष्ण को याद कर, बड़ी आसानी से कृष्ण को याद कर पाएगा। और सबसे बड़ा जो रियल स्मरण क्या है, कृष्ण हमारा स्मरण करे। हम तो कृष्ण को स्मरण करें निश्चित रूप से, रियल स्मरण वो है जब कृष्ण हमारा स्मरण करें। तो वो जो डिवोटी है, वो जो स्थिति है वो सबसे ऊंची है, क्योंकि हम ऐसे काम करें, हम ऐसी सेवा करें, हम ऐसे सेवा करने का प्रयास करें कि स्वयं भगवान हमें देखना चाहें। और आप देखिए कि जब भगवान द्वारका में थे तो इतना ऑपुलेंस था द्वारका के अंदर, और रानियों के बीच में, इतनी सारी रानियों के बीच में भगवान रात को उठ के गोपी गोपी और राधा राधा करते थे और रोने लगते थे, क्योंकि उनको वो वृंदावन का जो स्मरण हुआ था, वो राधा रानी को, गोपियों को, वृंदावन वासी के उन भावों को भूल नहीं पाते थे। और ऐसा कई बार हुआ कि जो है भगवान अपने महल में रात को उठ के रोने रो रहे हैं उन गोपियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए। तो भगत से भगवान अपने भक्तों के लिए रोते हैं जो उन्हें स्मरण करता है हमेशा, वो भी उसका स्मरण करते हैं और हमेशा स्मरण करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो हमारे लिए, हम सब के लिए जो है वो आइडियल स्थिति, और हमें भी इस तरह की स्थिति को प्राप्त करना है कि भगवान जो है वो हमें याद कर सके। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो संयोग और वियोग वाला है, मैं उसमें एक बुक में अभी पढ़ रहा था पीछे, उसमें लिखा हुआ था कि हम तरीके ये होते हैं कि कोई यूनियन में अगर भगवान के साथ भी है और भगवान के साथ भी खड़ा है, या भगवान के व्यक्ति है उसके साथ में नजदीक में है, या जैसे चलते हम किसी व्यक्ति को स्मरण रख सकते हैं, जैसे उसमें इतना क्लैरिफाई तो नहीं किया गया है कि किस तरह से उनको स्मरण के यूनियन में कर सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल्स थे कि जो साथ में होते हुए भगवान को स्मरण रखते हैं, मतलब ये उनके लिए जैसे ये नहीं है कि भगवान चले गए तो वो जो स्मरण है वो तो गोपियों का उनका है, लक्ष्मी और द्वारका के रानी के लिए था कि वो भगवान के हमेशा साथ में रहती थी, फिर भी वो भगवान को कभी भूलती नहीं। मतलब जैसे भगवान को लिए कि भगवान थोड़ी देर के लिए कहीं जाते थे, जैसे लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है कि भगवान कभी किसी वरदान देने के लिए कभी गायब हो जाते थे, जैसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं अप्रकट हो गए, तब भी जो रानी मतलब लक्ष्मी जी हैं वो भगवान को याद कर रही है, उनको भूलती नहीं है कि भगवान अभी कहाँ चले गए, कहाँ उन्हें क्या, जैसे कई ऐसे प्रसंग आते हैं दूसरे पुराणों में इसकी चर्चा होती है कि भगवान कई बार जो है वो गायब हो गए, खास करके जो दत्तात्रेय और अनसुईया के प्रसंग में आता है भगवान बहुत समय के लिए चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी उनको ढूंढती हैं कि भगवान कहाँ चले गए, अभी मेरे पास बैठे थे और बीमार मिल नहीं गए। तो ढूंढते ढूंढते पहले वो उनको कहीं नहीं मिलती, तो फिर सरस्वती को अप्रोच करती हैं, फिर पार्वती को अप्रोच करती हैं, और फिर तीनों मिलकर जो है ढूंढती हैं इस तरह से, जबकि उनके दूरों के पति भी जा चुके होते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल एक्चुअली में इतना बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है कि यूनियन में इसको कैसे वो करना है, बट
यूनियन में जो स्थान कर काफी बड़ा है, सी रिटेंशन ऑफ बीइंग इन लॉट विदाउट बीइंग एसोसिएशन,
ये इन एसोसिएशन में तो वो हो गया ना, जैसे उनकी का विदेह में से जैसे राधा रानी और दूसरे भक्तों का भाव है,
खाली स्मरण का ये डेफिनेशन देना कि बीइंग इन लॉट विदाउट बीइंग एसोसिएशन यानी ये वाला
उसकी स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो कृष्णमयी हो जाती है, तो व्यक्ति भगवान कैसे बनेगा, तो कभी भी नहीं बन सकता, उसकी स्थिति नहीं। पर उसकी उसका जो बॉडी है उसको तदीय वस्तु हो जाता है, उसकी उसकी सारी चीजें जो है तदीय हो जाती है, क्योंकि वो भी भगवान का है, भगवान से संबंधित है, इसलिए वो भगवान की वस्तु में है। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं था इनकम वॉट ही भगवान नहीं बनता, भगवान जैसे बन जाता है।
तो जी वो आपने पांचवा स्तर बताया था कि किसी विशेष रूप पर एकाग्र करने में रुचि उत्पन्न करना। तो मेरा थोड़ा सा एक डाउट था कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से ट्रेवल करते हैं, अदर विष्णु फॉर्म्स में भी दर्शन लेते हैं, तो समय भी महाप्रभु बड़े भावावेश में और उनका नृत्य करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, तो इसको कैसे समझे?
बिल्कुल ठीक है, भगवान ऐसा नहीं कि कोई विशेष रूप या विशेष चीज की पूजा करता है तो दूसरी चीज को नेग्लेक्ट करेगा या उसकी जो है उसके उसका रिस्पेक्टफुल नहीं होगा उसके प्रति। महाप्रभु का यही भाव था, कृष्ण को कृष्ण के प्रति और कृष्ण ही देव कृष्ण के ही चाहते थे, परंतु इसका मतलब नहीं था कि वो राम को नरसिंह को वामन को और किसी दूसरे रूप को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उनका उनसे भाव होने, क्योंकि सब में भगवान देख भगवान सब में भगवान एक एक एडवांस डिवोटी भी सब में भगवान देखता है। एक बार एक मायापुर में एक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए, मायापुर में एक रामा घोड़ा था, हम लोग सब उठते विद्यानगर में, एक बार कृष्ण बना था वहां पे लोग का लोग बनते हैं, तो इधर लोकनाथ स्वामी महाराज जो है वो 5-10 मिनट के लिए उधर गए थे, हम लोग भी थे उधर, तो महाराज ने जो है उनको प्रणाम किया उस व्यक्ति को जो कृष्ण बना था। तो सिर्फ ये आप समझे बात कहने की, ऐसा नहीं है कि वो महाराज को ही मालूम है कि एक्टिंग कर रहा है, लड़का है यहाँ का लोकल लड़का है, पर महाराज ने तभी प्रणाम किया उसे, बिकॉज उन्होंने उसको कृष्ण के रूप में देखा, भगवान उसको उन्होंने देखा। तो महाप्रभु तो वहां भी कृष्ण को देख रहे हैं, ये भी नरसिंह है, ये भी कृष्ण ही है, ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।